तारीख 25 जुलाई दिन शनिवार, बीबीसी इंडिया बोल, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। यौन शोषण के आरोपों में घिरे जाने माने पर्यावरणविद आर के पचौरी को टेरी प्रमुख के पद से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को दफ्तरों में यौन शोषण से बचाने के लिए 1997 में दिशा निर्देश जारी किए थे, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस कहा जाता है। हाल ही में खबर आई कि केंद्र सरकार ने पीड़ित महिलाओं को खास मामलों में बिना वेतन काटे 3 महीने की छुट्टी देने की बात कही है। सवाल यह है कि क्या महिलाओं के लिए दफ्तरों में अपने प्रति अन्याय या यौन शोषण की शिकायत करना आसान हुआ है, और अगर ऐसा है तो महिलाओं को कितना न्याय मिल पाया है। बीबीसी इंडिया बोल में यही है बहस का मुद्दा। मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने क्रिकेटर एस श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंडेला को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप से बरी कर दिया है। राजस्थान रॉयल्स के इन तीनों खिलाड़ियों पर आईपीएल 2013 के दौरान स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा था, जिसके बाद इनके क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लग गया था। अदालत के फैसले के बाद श्रीसंत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने इन 2 साल में बहुत कुछ झेला। मैं बार बार सोचता हूं कि मुझे ही क्यों निशाना बनाया गया, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं। इराक में स्थित कुर्द के विद्रोही संगठन पीकेके के ठिकानों पर तुर्की ने और हवाई हमले किए हैं। ये हमले बीती रात शुरू हुए और साल 2013 में हुए संघर्ष विराम के बाद पहली बार ये हमले किए जा रहे हैं। पीकेके का कहना है कि संघर्ष विराम के अब कोई मायने नहीं है। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावतोग्लू का कहना है कि पिछले 24 घंटों में करीब 600 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना है कि इन लोगों को का संबंध पीकेके या चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट से है। प्रधानमंत्री ने बताया कि तुर्की के लड़ाकू विमान सीरिया में आईएस के ठिकानों पर भी हमला कर रहे हैं। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कैवसोग्लू का कहना था, तुर्की के विदेश मंत्री कह रहे थे कि इस ऑपरेशन के समाप्त होने के बाद और आईएस के खिलाफ लड़ाई के अंत में जिन इलाकों से आईएस का सफाया हो जाएगा वो सुरक्षित जोन बन जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग अपने घर अपने देश लौट पाएंगे। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भगौड़े सैनिकों को माफी देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय चैनल पर घोषणा करते हुए बशर अल असद का कहना था कि सीरिया और बाहर रह रहे हजारों भगौड़े सैनिकों की सजा माफ कर दी जाएगी। उनका कहना था कि कई युवा या तो देश छोड़कर भाग गए हैं या सेना में भर्ती न होने के तरीके अपना रहे हैं। मध्य पूर्व में सीरिया की सेना सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, लेकिन पिछले 4 सालों से विद्रोही समूह और जिहादी चरमपंथियों से लड़ाई के चलते उसे काफी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में पिछले 1 हफ्ते से जारी मॉनसून की बारिश के बाद आई बाढ़ में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित पहाड़ी इलाका चित्राल बताया जा रहा है। बारिश और उसके बाद आई बारिश में अब तक 19 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन भर लोग लापता हैं। रिपोर्टों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में बाढ़ की वजह से सैकड़ों की संख्या में घर और दुकानें डूब गए हैं और हजारों की संख्या में लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कीनिया के लोगों से कहा है कि वे चाहते हैं कि अफ्रीका वैश्विक विकास का हब बने। कीनिया की राजधानी नैरोबी में एक व्यापारिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ओबामा ने कहा कि अफ्रीका बदल रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर नीतीश ने बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, और जो विषय है वो आप जान चुके हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मुंबई से एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रही हैं। साथ में कार्यक्रम में शामिल होंगी वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर, और आप जो श्रोता हैं आपके सवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। फ़ोन नंबर एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, 1811-7000 और 1811-7001। ना काम की बात अगर हम करें तो दफ्तरों में जिस तरह से काम होता है, उसमें हमें ये देखना होता है कि क्या किसी का कहीं शोषण तो नहीं हो रहा। 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आई, तो सबसे पहले कार्यक्रम में मैं शामिल कर रहा हूँ वृंदा ग्रोवर को कार्यक्रम में। वृंदा, सबसे पहले तो यही बताइए कि विशाखा गाइडलाइंस किस तरह से महिलाओं को मजबूती प्रदान करती हैं अपने खिलाफ हो रहे यौन शोषण और अन्याय का विरोध करने के लिए।
देखिए, विशाखा गाइडलाइंस जिस संदर्भ में आई, वहां पर एक कोर्ट ने माना कि जब महिलाएं कार्यस्थल पर जा तो उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार होता है वो फर्क होता है। उनका जो राइट टू वर्क है, जो उनका राइट टू लाइफ है, वो अलग तरह से प्रभावित होता है। और कोर्ट ने कहा कि इसके बारे में कोई कानून नहीं है हमारे देश में, इसलिए विशाखा गाइडलाइंस बनाई गई, जिन्होंने कहा कि जब हम सेफ वर्क एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें महिलाओं के प्रति जब देखा जाएगा, तो अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट, यौन हिंसा एक प्रकार की है, अगर सेक्सुअल हरासमेंट होगा तो वो सेफ वर्क एनवायरनमेंट नहीं है। और उन्होंने इसकी एक परिभाषा दी,
उस परिभाषा के मुताबिक क्या क्या चीजें आती हैं?
ये बहुत सारी चीजें हैं। वो एक वर्ब हो सकता है, एक ईमेल हो सकती है, एक एसएमएस हो सकता है, एक टच हो सकता है, एक उससे ज्यादा एक मोलेस्टेशन हो सकती है, और उसको बलात्कार की हद तक जा सकता है। तो उसमें कहा कि ये क्या होगा अगर वो एक औरत की डिग्निटी को ऑफेंड करता है, अगर वो टच जो है, वो जोक जो है, वो वाक्य जो है, अगर वो उस औरत को अनुचित लगे, अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा है और वो उसके कार्यस्थल पर है या कार्य के दौरान है, तो वो अगर महिला कह रही है मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे ये गलत नहीं लग रहा, तो उसको सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। एक तो उसकी एक परिभाषा दी गई और उसको एक गलत माना गया, और कहा कि जिम्मेदारी है जो वहां पे एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो कार्यस्थल पे ऐसा रखे कि महिलाओं को इस प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हो।
बिल्कुल।
और साथ में एक मैकेनिज्म दिया उसके साथ डील करने के लिए कि उसके लिए वो पुलिस अदालत के चक्कर नहीं काटने की जरूरत, अंदर ही एक कमेटी बनाई जाए। और ये एक, जैसे हर सर्विस रूल में एक मिसकंडक्ट होता है, एक दुर्व्यवहार होता है, सेक्सुअल हरासमेंट को एक फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट माना जाएगा। और जैसे बाकी मिसकंडक्ट के लिए, दुर्व्यवहार के लिए आपके पास डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, उसी तरह एक अलग तरह की कमेटी होगी, क्योंकि ये जो दुर्व्यवहार है ये भिन्न है औरों से, और इसमें महिलाएं ज्यादा होंगी, और विशेषकर इसमें बाहर से ऐसी महिला या ऐसे एनजीओ के कोई कार्यकर्ता को रखा जाए जिनको महिलाओं के अधिकारों के, महिलाओं के साथ जो नाइंसाफी है उसकी एक समझ हो।
बिल्कुल, महिलाओं के साथ, महिलाओं के साथ जो के बारे में उनकी समझ होनी चाहिए। मैं रुक्मणी के पास चल रहा हूँ, मुंबई से इस कार्यक्रम में शामिल हैं, पेशे से वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुक्मणी, आप एक पत्रकार हैं और आप एक चैनल में काम करती थी जहाँ पर आपके साथ कुछ इसी तरह की घटनाएं हुई थी, वो किस तरह की घटना थी?
देखिए, मैंने, मेरे केस से मैंने इसलिए उस बात को उठाया और रिपोर्ट किया क्योंकि वो बहुत ही एक सटल सेक्सुअल हरासमेंट के स्पेस में आता है जहाँ पे स्पर्श की कोई गुंजाइश नहीं थी, पर मेरे आमने सामने बैठ करके मेरे बॉस, जो ऑफकोर्स मुझसे ज़्यादा पावरफुल थे और ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, उन्होंने मुझसे कई सारे बहुत ही पर्सनल और ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछे, जैसे मेरे कितने प्रेमी हैं, मैंने शादी क्यों नहीं की, मैं कितने लोगों के साथ रही हूँ, इस तरह के सवाल
जो कि बहुत ही पर्सनल है,
और तुम किस तरह की महिला हो, तुम तो शायद इस तरह की महिला हो, मुझे इस तरह की या उस तरह की महिला से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं सब तरह की महिला हूँ, पर किस संदर्भ में और किस जगह पे ये सवाल उठाया जा रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
आपने इस केस को,
मैं पूरा करूंगी, क्यों उठाया जा रहा है? कभी कभी ये सवाल इसलिए उठाया जाता है कि आपको, आपको वो इस नजर से इसलिए देखना चाहते हैं कि वो, लेकिन पुट यू इन योर प्लेस, वो आपको एक जगह पे डाल देना चाहते हैं, आपके काम को खराब करना चाहते हैं, आपको काम नहीं देना चाहते हैं उनको, तो कई तरह के रीजन हो सकते हैं जिस वजह से वो आपके चरित्र पर उंगली उठाना चाहते हैं। जी, तो जी बताइए आपका
जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किस तरह से इसके खिलाफ मतलब लड़ाई लड़ी, मैं इस पे बाद में आऊँगा। कार्यक्रम में एक श्रोता को बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको शामिल करना चाहता हूँ। जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर।
जी मैं दुर्गेश कुमार गुप्ता वाराणसी से बोल रहा हूँ सर।
जी आप बताइए।
जी सर, जो नए दिशा निर्देश आए हैं कि महिलाओं को 3 महीने की छुट्टी मिलेगी, तो सर जब महिलाओं यौन उत्पीड़न का सर शिकार होती हैं तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से परेशान होते हैं। और सर ये संवैधानिक छुट्टी मिल जाने से महिला को काफी सोचने विचारने का मौका मिलेगा। हाँ। और मानसिक रूप से तैयार होकर अपने यौन उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है सर।
जी
तथा जहाँ तक मुझे लगता है कि सर इन नए दिशा निर्देशों से हम भविष्य में एक आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं सर।
जी एक आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं फिर से जा रहा हूँ रुक्मणी के पास, जहाँ से मैंने बात छोड़ी थी। आपने एक आवाज़ उठाई रुक्मणी, तो ये बताइए जब आपने एक मामला चला दिया, संस्था का रोल आपके प्रति क्या था, भूमिका उनकी क्या थी, और फिर मैं वृंदा जी के पास आऊंगा कि संस्था किस तरह से परेशान करती है।
जी, असल में संस्था जो है हैरेसर के साथ ही जनरली चली जाती है। मैंने कई सारे केसेस देखे हैं और मेरे अनुभव के अनुसार मैं ये कहूंगी कि संस्था जो है वो दूसरा हैरेसर बन जाता है आफ्टर मोबाइल, क्योंकि आपका जो बॉस है वो क्लियरली जो उस संस्था का मालिक है उसके ज्यादा करीबी है और एक पावर इक्वेशन है उसके पास, इसीलिए वो आपको दबा सकता है, इसीलिए आपसे वो ऐसी बात कर सकता है। वो मालिक के बेटी के साथ इस तरह से बात नहीं करेगा क्योंकि उसकी खुद के नौकरी के ऊपर प्रॉब्लम होगा।
यानी कि आप ये कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि संस्था खुद हैरेस करने लगता है। वृंदा जी संस्था जब हैरेस करने लगे, विशाखा गाइडलाइन के तहत इन्होंने केस दर्ज करवा दिया, मामला चलने लगा, लेकिन संस्था खुद ही एक पार्टी बन गई, हैरेस करने लगी, तब क्या होगा?
आपका आखिरी बात मुझे सुनाई नहीं दी।
जी मैं कह रहा हूँ कि जब संस्था जो है खुद ही हैरेस करने लगे, भाई एक केस, एक रुक्मणी जी ने केस पुट कर दिया, संस्था की ओर से हैरेसमेंट होने लगा। अब
देखिए ये बिल्कुल सही कह रही है जो रुक्मणी कह रही है, और ज्यादातर महिलाओं का यही अनुभव है। जब महिलाओं ने आवाज उठाई है, जब महिलाओं ने ऑब्जेक्ट किया है, तो उनकी नौकरियां दांव पर लगी है। और यहाँ पर हमको जो समझ में आता है कि जो ये इस तरह की यौन हिंसा महिलाओं के ऊपर होती है, खासकर जब ऊंचे जो कर रहा है, जैसे इनके केस में इनके बॉस थे, जब ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग हैं तो जो मैनेजमेंट है वो उनके साथ मिली हुई होती है और उनको लगता है कि भाई ये तो आम बात है, इसमें क्या ये महिला किस बात पे इतना हल्ला कर रही है। और महिलाओं की या तो उसको काम पे परेशानी दी जाती है या उसको नौकरी से मजबूर करके हटाया जाता है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है, अब जो 2013 का कानून है उसमें उन्होंने सख्त प्रावधान रखे हैं कि ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, कानून में ये जिम्मेदारियां हैं एम्प्लॉयर की, और ये समय लगेगा इस बात को एम्प्लॉयर के ऊपर सख्ती से लाने के लिए, जिसमें सरकार का एक रोल होना होगा। जिस तरह सरकार और चीजों के लिए, आप अगर देखते हैं कोई फैक्ट्री में बिजली का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप देखते हैं फैक्ट्री वाले अपने सेल्स टैक्स नहीं देते, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। इस तरह की जो कंपनियां हैं, इस तरह के जो पब्लिक सेक्टर है, उनको आप किस तरह पीनालाइज करेंगे? इसमें जरूरी है कि जो एक हम पूरी एक समझ बना रहे हैं समाज में, वो समझ किस तरह होगी। और कानून अब एक क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, ये कोई ये बात नहीं है कि आप अच्छे एम्प्लॉयर हैं तो आप कीजिए ऐसे, आप अगर ये नहीं करते हैं तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी।
वृंदा जी आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, बिल्कुल बात समझ में आती है। यहीं पर कार्यक्रम में दो श्रोताओं को एक साथ शामिल करते हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
जी मैं संदीप पाठक बोल रहा हूं।
संदीप पाठक जी कहां से बोल रहे हैं?
गोपालगंज बिहार से।
गोपालगंज बिहार से जी बताएं।
मैं ये कहना चाहता हूँ अगर कोई भी मतलब ये जहाँ पे वर्क करती है महिलाएं और वहाँ पे जो पुरुष होते हैं, तो सबसे पहले एक मानसिक तौर पे जो प्रशिक्षक रखना चाहिए वहाँ पे, और जो पुरुष वर्कर है उनको थोड़ा सा एक तरीके से पहले प्रशिक्षित करना चाहिए, उनको उनका पहले विचार बदल जाए, इस तरह का काम किया जाना चाहिए। अगर बेसिक चीजें भावनाएं हमारी बदल जाती है, हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं, तो फिर ये सब गलतियां कभी नहीं होंगी।
आप ये कह रहे हैं कि काउंसलर की जरूरत है।
हाँ काउंसलर की जरूरत है बिल्कुल, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा विचार बदल जाए, सबका विचार बदल जाए इस चीज को लेकर।
जी पाठक जी आप नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, एक और कार्यक्रम में श्रोता को शामिल कर लेते हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
डॉक्टर रामकिशन गुप्ता घाटमपुर कानपुर से।
रामकिशन जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
शर्मा जी आपको पहले प्रणाम करते हुए हम ये कहना चाहेंगे
जी
कि जैसा कि अभी आप बिंदा जी से बात कर रहे थे और लोगों से बात किए, अब सबसे बड़ी कमी मैं जहां तक समझता हूं कि हमारा जब तक चरित्र बल सही नहीं होगा, आप देखते हैं कि आए दिन महिलाओं के साथ दिखाया जाता है कि गलत ढंग से व्यवहार हुआ। इसके पहले आपने देखा होगा कि जब दिल्ली का घटना हुई थी, कभी शायद ही सुनाई देती थी, अब रोज जो है ये चर्चा का विषय बन गया है कि फला महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। ये बात बिल्कुल सच है कि पुरुष लोग गलती करते हैं, लेकिन जो पहले था क्या एकदम यही आ गया है क्या एकदम? और सबसे बड़ा इसमें यह है कि कानून तो अपना काम करता ही कम है, जो व्यावसायिक कानून को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे कुछ चरित्र बल में, अगर बुरा न माने तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ चरित्र बल में भी गिरावट आ गई है कि जो पहले हम लोग बर्दाश्त करते थे, अगर कभी किसी ने हम पर गलत आरोप लगाया तो हम इसको गलत आरोप लगा करके उसको बदनाम भी करने लगे। कहीं कहीं मैंने ये भी घटनाएं सर देखी है, ये मैं सर जी आपसे कहना चाहता
जी। बहुत बहुत शुक्रिया रामकिशन जी। मैं रुक्मणी जी आपके पास आ रहा हूँ। रुक्मणी जी, आपने एक लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ने पर जो संस्था है खुद आपके खिलाफ होने लगी, उसके बाद आपने इसको जीता कैसे, और उस समय की मानसिक परेशानियां क्या थी, वो भी तो एक प्रताड़ना का हिस्सा है।
जी हाँ, क्योंकि होता यह है कि जो जो वर्बल हरासमेंट आपके साथ होता है, जो जो आपको आपको आपका पहला स्टेज ऑफ हरासमेंट है जहाँ पे आपका बॉस या आपका जो सुपीरियर आपको हरास करता है, वो तो एक चीज है। उसके बाद जो घटना घटती है, जैसे गुट बन जाते हैं ऑफिस में, बाहर के लोग एक साथ हो जाते हैं, बहुत सारी बातें होने लग जाती हैं आपके बारे में, फिर आपको एक मजाक का सिंबल बना लिया जाता है कि आप तो छोटी छोटी बातों में बिगड़ जाती हैं, आपको मजाक लेना नहीं आता है, आप बहुत ज्यादा सीरियस बन गई हैं, ये ऐसी बातें आपके आप ट्रबल मेकर हैं, तो आप एक मुद्दे को उठाते हैं और आपका ही मजाक बना दिया जाता है। पहला चीज तो ये है, तो जो भी महिला अपने राइट्स के लिए खड़ी हो या अपने सम्मान के लिए खड़ी हो, पहले तो ये समझ ले कि वो किस समाज में खड़ी हो रही है, और जब वो खड़ी हो रही है तो उनका मजाक भी बनेगा, आपका और उत्पीड़न भी होगा। ये कोई छोटी लड़ाई का हिस्सा नहीं है, ये लंबी लड़ाई का हिस्सा है, और आपको ये समझना होगा कि आप समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, और इसकी ये दिमाग में बहुत क्लियरली रखना पड़ेगा, क्योंकि हरासमेंट जो है, जो आपका साथ पहला हरासमेंट हुआ वो पहला स्टेज है, उसके बाद पूरा समाज आपके साथ एक तरीके से लड़ाई करेगा
जी।
और आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, पर आपके सपोर्टर्स भी होंगे, और अभी तो हम काफी अच्छे समय पे में हैं कि महिलाएं महिलाओं के लिए खड़ी होती हैं, पुरुष भी महिलाओं के लिए खड़े होते हैं। तो मैंने किसी से, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ
जी, बहुत संक्षेप
कि मैं कमिटी के पास गई, एक कमिटी नाम की थी, सेक्शुअल हरासमेंट कमिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में थी, पर उसमें कोई आउटसाइडर नहीं था, और जो एचआर के लोग थे जिन्होंने मेरे बॉस को भी हायर किया था, और मेरे बॉस का पहले भी एक हिस्ट्री था सेक्शुअल हरासमेंट का, जिसकी वजह से उनको ऑर्गेनाइजेशन से निकाला गया था, वो फिर से वापस आते हैं और फिर मेरे साथ ही बदतमीजी करते हैं, और कई महिलाओं के साथ उन्होंने बदतमीजी की है, मैंने ऐसा सुना है। तो लेकिन क्या होता है कि आप किस कमेटी के पास गए हैं, आपका जो पंच परमेश्वर है वही तो उनके साथ मिला हुआ है, तो आप जिस जज के पास जा रहे हैं वो उनसे मिला हुआ है, आपको कोई जस्टिस का स्कोप ही नहीं मिलता है। तो इवेंचुअली मैं इनफैक्ट उस कमेटी के सामने आके खड़ी नहीं हुई, मैं डॉक्यूमेंट सबमिट किए, मैं सब कुछ अपना स्टेटमेंट रखा, पर मैं उनके सामने गई नहीं, क्योंकि मैं उनसे बोलती रही कि आप यहाँ पे आउटसाइडर लाइए, आप एक बाहर का आदमी लाइए, एक सही बाहर का आदमी लाइए, आप एचआर के लोग हटा करके एडिटोरियल से लोग लाइए, पर वो नहीं हुआ मेरे केस में।
मैं वृंदा जी के पास जा रहा हूँ। वृंदा जी, ये जो केस है रुक्मणी जी बता रही हैं, भाई जब आपको लगेगा कि पंच परमेश्वर ही गड़बड़ कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो विशाखा गाइडलाइन कहती है कि आउटसाइडर्स को भी कमेटी में होना चाहिए, और अगर ना हो तो?
देखिए, वो कमेटी गलत है, वो कमेटी इस कंप्लेंट को सुनी नहीं सकती, वो इंक्वायरी कर नहीं सकती। और मैं यहाँ पे एक ये बात बताना चाहूंगी, तो 2013 में कानून बन चुका है, तो अब विशाखा गाइडलाइंस नहीं, उसी को डेवलप करते हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ 2013 का कानून है, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि कंप्लेंट्स कमेटी में बाहर का मेंबर होना चाहिए, वो मेंबर जो है वो महिला राइट्स के बारे में उनकी जानकारी और समझ होनी चाहिए, ऐसा आउटसाइडर मेंबर होना चाहिए, नहीं तो जो कमिटी है जैसे रुक्मिणी ने बताया वो कमिटी ही गलत है, वो कमिटी कानूनन रूप से गलत है, उसकी कोई भी रिपोर्ट की कोई मान्यता नहीं होगी। मगर वो हमें क्या दिखाता है कि पूरे ये जो दफ्तर है, ये जो कार्यस्थल है, ये इस चीज को ठीक से करना ही नहीं चाहते हैं, वो इस बात को दबाना चाहते हैं, वो महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न हो रहा है उसके बारे में वो सीरियसली काम नहीं कर रहे हैं
जी,
और इसीलिए वो इस कानून का उल्लंघन इतनी आसानी से कर।
वृंदा जी हमारे दो श्रोताओं ने बात कही
और मैं उसी बात पे आना चाह रही हूँ
कि नैतिक शिक्षा की बात कर रहे थे दो हमारे श्रोता,
उस पे आना चाह रही हूँ। देखिए हम लोग ये यौन सेक्सुअल हैरेसमेंट कानून के बारे में ज्यादातर कंप्लेंट्स और कंप्लेंट्स कमेटी की बात करते हैं। कानून में स्पष्ट रूप से लिखा है और विशाखा गाइडलाइंस ने भी ये बात कही थी कि वो जो जिम्मेदारी है एम्प्लॉयर की और जो कार्य है कमेटी का वो हाँ। केवल कंप्लेंट्स को सुनना और उनकी इंक्वायरी करना नहीं है, आपको पूरे साल में हर एक कुछ कुछ महीने पर वर्कशॉप करनी है, ओरिएंटेशन करनी है, दफ्तर में इस बारे में चर्चा करनी है। मैं मानती हूँ कि आज हमारा जो समाज है, और ये आज की बात नहीं है, हिंदुस्तान के समाज में हमेशा से ये है, हमारे समाज में महिलाओं को नीचे का दर्जा दिया हुआ है
जी।
उसमें अगर बदलाव लाना है तो उसमें शिक्षा, चर्चा, आपस में बातचीत, एक समझ बनाना,
यानी कि आप ये कह रही हैं कि समझ बनाना ऑफिस बहुत जरूरी है। बहुत देर से हमारे दो श्रोता इंतजार कर रहे हैं।
ये भी लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताना होगा
कि कितनी बार आपने उनको सिखाया
करी है
जी। दो श्रोताओं को एक साथ शामिल कर रहे हैं जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
जी नमस्कार, मैं मणिकांत तिवारी, ग्राम पोस्टमुड़ा, जिला बक्सर, बिहार से बोल रहा हूं।
हाँ मणिकांत जी, आप बिहार से बोल रहे हैं, स्वागत है कार्यक्रम में जी।
सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद कि आपने इतना प्रासंगिक मुद्दा इस विषय में उठाया
जी।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम पुरुष लोग हैं, पुरुष प्रधान समाज में, जब हम ही महिलाओं की इज्जत नहीं करेंगे, हम अपने घर में महिलाओं की इज्जत नहीं करते, तो फिर हम ये कैसे उम्मीद करते हैं कि हमारे ही घर की महिलाओं की दूसरे किसी संस्थान में, किसी प्रतिष्ठान में उनकी इज्जत की जाए। हमारे अक्सर देहातों में भी ये देखने को मिलता है कि हम अपने घर में महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को पूरी तरह से दबा करके रखते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन हम ही पुरुष प्रधान जब घर समाज के बाहर निकलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, तो हम ये पाते हैं कि किसी न किसी तरह हम ही पुरुष उन पे फपटिया कसते हैं, उन पे कमेंट्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अपनी मानसिकता को बदलना जरूरी है।
मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। दूसरे श्रोता को यहीं पर शामिल कर लेते, नाम बताएं।
जी सर, मैं मुरारी शाह किशनगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
हाँ मुरारी जी, अपनी बात रखिए।
जी सर, मेरा कहना है कि भारत में कितना कानून बनेगा, कानून पे कानून बनता जा रहा है और महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पा। और उसके बाद जो हमारी शिक्षा है, वो जब शिक्षा ही नैतिक विहीन हो चुका है, तो फिर लोग महिलाओं की प्रताड़ना कैसे रुकेगी। सर, अभी जो हमारे दो तीन श्रोताओं का बात जो मैंने सुना, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ।
आप भी नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुरारी भाई। एक श्रोता को और शामिल कर रहे हैं और कुछ सवाल हैं जो पेचीदे हैं, वो मैं वृंदा जी से भी पूछने वाला हूं। श्रोता को पहले शामिल कर लेते हैं, नाम बताइए।
जी सत्यप्रकाश शुक्ला।
सत्यप्रकाश जी, स्वागत है कार्यक्रम में, अपनी बात रखिए।
नमस्कार सर।
नमस्कार
जी। सर, जो सभी श्रोताओं ने उठाए हैं सवाल,
हाँ हाँ,
यही आज का समाज सर, आधुनिक समाज कहा जा रहा है सर, जो पश्चिम की सभ्यता हम लोग अपना रहे हैं सर।
हाँ हाँ।
शहर हो चाहे देहात हो सर, देहात को शहरों ने खा लिया है। सर, पहले जो देहात होते थे वहाँ भी कोई बदतमीजी, कोई पहनावा सब बढ़िया होता था, लेकिन शहरों को देख करके सर देहात भी मिट गए हैं। तो अब सबसे बड़ा चीज है कि नैतिक शिक्षा, चैत निर्माण, ये कैसे हो, इस पे एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए।
हाँ।
और ये सर फैलाना चाहिए
जी, चरित्र निर्माण का मुद्दा फैलाना चाहिए।
क्यों पुरुष ऐसा, क्यों महिलाएं ऐसा वेशभूषा पहनती, क्यों पुरुष ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वो दिन रात यही देखते हैं सर। टीवी में भी जो दिखाया जाता है, जो धारावाहिक, जो पिक्चर, बताइए आप बॉम्बे की पिक्चर देखेंगे, हॉलीवुड की पिक्चर देखेंगे सर, क्या दिमाग में आपके चलेगा।
मतलब आप इसका जिम्मेदार जो है फिल्मों को ठहरा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू से एक श्रोता को यहीं शामिल कर लेते हैं, इसके बाद वृंदा जी से कुछ सवाल पूछने हैं, नाम बताएं। जी जम्मू से बोल रहे हैं, नाम बताएं।
हाँ जी, मैं अब्दुलजीत भट्ट बोल रहा हूँ, जम्मू सुरनकोट क्षेत्र से। महिलाओं के बारे में जो बात चल रही है,
हाँ?
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं आपको पहले अपने गांव की बात बताता हूँ
जी।
सर, यहाँ पर तीन चार लड़कों के पास लड़कियां खुद आई और उनसे घर में घुस गई और बाद में पुलिस ने पकड़ के लड़कों को जेल में दे दिया और लड़कियों ने गलत कर दिया। मेरे ये हमारा भारत में एक बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लड़कियां खुद भी ऐसा काम करती हैं और बाद में लड़कों को फंसा देती हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ही मुद्दे की बात कही। मैं सीधे वापस आ रहा हूँ रुक्मणी जी। कई बार ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें कि लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि वो खुद इस तरह का प्रस्ताव देती हैं, और इस चीज को
किस तरह का मतलब प्रस्ताव देती हैं?
जैसे जैसे हमारे एक श्रोता अभी बता रहे हैं, और ये एक लाइन है, एक लाइन
मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि
और कैसे हम समझेंगे, कैसे हम
समझेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि लड़कियां हरासमेंट करती हैं तो जरूर करती होंगी, अगर बॉस होती होंगी तो कर ही सकती हैं, कोई भी जो पावरफुल पोजीशन में है वो दूसरे आदमी का हरासमेंट कर ही सकता है।
नहीं तो अगर लड़कियां पावरफुल हैं और अगर मान लीजिए वो अधिकारी, और अगर पुरुषों का शोषण होता है तो वो कैसे बचेंगे?
देखिए मुझे इसका लीगल सिचुएशन तो पता नहीं है, आपको दादी से ही पूछना
मैं
पड़ेगा।
मैं
उससे पहले एक मुद्दा उठाना चाहती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे किसी ने कहा कि शहरों ने गांव को खा लिया है वगैरह वगैरह। देखिए शहर तो बनेंगे और गांव में भी लड़कियां पढ़ेंगी, लड़कियां तो बाहर निकलेंगी, और ऐसा नहीं कि घर में शोषण नहीं होता है, सबसे ज्यादा शोषण इनफैक्ट घर में होता है। लड़कियां बाहर जाती हैं, नौकरी करती हैं, पढ़ती हैं, पावरफुल होती हैं, एम्पावर्ड होती हैं, तो आवाज उठाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने में ये चीजें नहीं होती थी, अभी महिलाओं के पास आवाज ज्यादा है, हम अच्छे वक्त में रह रहे हैं। एक्चुअली इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, ये वक्त पहले के सारे वक्तों से ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे लड़कियां कानून है, महिलाएं आवाज उठाती हैं। तो ये जो इसकी प्रतिक्रिया है कि गांव खत्म हो गए और फिल्में बन रही हैं, सब बनेंगी, चीजें आगे ही जा रही हैं।
रुक्मणी जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अब वृंदा जी के पास दो तीन कानूनी पचड़े समझने के लिए जा रहा हूँ। वृंदा जी, एक हमारे श्रोता ने आवाज उठाई कि कई मामलों में ऐसा भी देखा जाता है और इस तरह की बातें हम सुनते हैं कि महिलाएं जिम्मेदार होती हैं और पुरुष फंस गया उसमें। विशाखा गाइडलाइन के मुताबिक एक पुरुष को खुद सिद्ध करना है कि वो कल्प्रिट नहीं है, वो कैसे करेगा, और अगर वाकई नहीं है तो क्या होगा?
नहीं, कहीं पे भी ये नहीं लिखा विशाखा गाइडलाइन या 2013 का कानून जो अब लागू है देश में कि पुरुष को खुद सिद्ध करना है कि वो गिल्टी नहीं है। कमिटी के सामने महिला को बताना है कि उसके साथ हुआ है।
हाँ।
उसके बारे में कमिटी देखती है, गवाह अगर कोई है उनसे बातचीत होती है, दूसरे पक्ष को पूरे नेचुरल जस्टिस के राइट्स होते हैं।
हाँ।
तो ये कहना कि पुरुष को सिद्ध करना है कि मैंने नहीं कहा और महिला बस आके बोल दे कि मेरे को किसी ने ऐसे देखा या किसी ने कहा और उसको मान लिया जाता है।
हाँ।
ये तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है कमिटीज में, बल्कि कमिटीज में तो ये हो रहा है जो रुक्मणी ने आपको बताया, जहां पर महिलाएं सब कुछ बता रही हैं और फिर भी बोला जा रहा है कि अब देखिए ये महिला कितना परेशान कर रही है, अब पुरुष सारे अपना कल्चर बदले इस देश का।
पुरुष तो के लिए कोई प्रोडक्शन राइट है?
देखिए हमको समझना होगा कि इस समाज में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का लॉ है वो बहुत 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 अंडर यूज्ड है। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट हर समय हर कार्यस्थल पे हो रहा है। कितनी महिलाएं कंप्लेंट कर रही हैं, कितनों में हिम्मत है कि वो अपनी नौकरियां दांव पर लगा के अपनी डिग्निटी के लिए लड़ पाए? तो ये एक अंडर यूज लॉ है। ये जो बात बोली जाती है कि हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ, वो कोई आए, कुछ लड़कियों ने ऐसे केस में फंसवा दिया, मुझे आप स्टडी दिखाइए, मुझे आप डॉक्यूमेंटेशन दिखाइए।
आप ये कह रही हैं कि ये सारी बातें अफवाहें हैं?
मैं कह रही हूँ कि फॉल्स केसेस आर पार्ट ऑफ द बैकलैश। आज महिला उठ के आवाज उठा रही है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, सिर्फ आवाज उठ रही है।
ये लाइन
को बंद करने के लिए ये बैकलैश चल रहा है।
वृंदा जी, एक बहुत ही संक्षेप में टिप्पणी, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, ये लाइन बहुत पतली है कि एक इशारा करना और उस इशारों को कैसे लिया जाता है, ये पतली लाइन है, इसका विभाजन कैसे होगा?
इसके लिए वर्कशॉप कीजिए, बातचीत कीजिए, दफ्तर में लोगों को समझाइए कि महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। ये बोलना कि हमारा नैतिक चरित्र खराब है, हम पिक्चर देखते हैं तो हमारा दिमाग डगमगा जाता है, क्यों भाई आप आदमी हैं कि आपको कुछ भी कोई दिखा दे आपको समझ नहीं आता?
जी बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा जी, समय बिल्कुल समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया है। वृंदा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा जी, कार्यक्रम में हिस्सा लिया आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया रुक्मणी जी जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। कार्यक्रम में विदा लें इससे पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने क्रिकेटर एस श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंडेला को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप से बरी कर दिया है। इराक में स्थित कुर्द के विद्रोही संगठन पीकेके के ठिकानों पर तुर्की ने और हवाई हमले किए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भगौड़े सैनिकों को माफी देने की घोषणा की है। पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते से जारी मानसून की बारिश के बाद आई बाढ़ में अब तक 40 लोगों की मौत हो गई है। अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने केन्या के लोगों से कहा है कि वे चाहते हैं कि अफ्रीका वैश्विक विकास का हब बने। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा के इस अंक में बस इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होने वाली है भारतीय समय के मुताबिक 9:30 बजे घटना चक्र कार्यक्रम में। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।